दौला पुस्तक तेहरवी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं मुनिसुवयजिणवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु अम्णमिं कम्मानुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थ गन्तगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और इसमें अभी अपना कर्म अनियोग द्वार चल रहा है, और यहाँ कर्म का अर्थ क्रिया के अर्थ में ये बात यहाँ हो रही है। हम पृष्ठ संख्या 56 पर आ गए, 56। यहाँ जो तप कर्म की बात अपनी चल रही थी, जो हम यहाँ निक्षेप बता रहे हैं, उसमें से 8 नंबर का जो निक्षेप है तप कर्म, उसमें बताया गया था कि अभ्यंतर और बाह्य के भेद से 12 प्रकार का जो है वह तप कर्म है। और तप किसको कहना, तो 3 रत्नों को प्रकट करने के लिए, जो इच्छा निरोध को तप कहते हैं। और ये कहाँ लिखा है तो हमने देखा था, चामुंडराय द्वारा रचित चारित्र सार ग्रंथ का ये वाक्य है। नीचे लिखा है देखो फुटनोट में पेज नंबर 55 पर, रत्नत्रया आविर्भावार्थम, आविर्भावार्थम यानी प्रकट करने के लिए, इच्छा निरोधस तपः, अथवा दूसरी परिभाषा कर्म क्षयार्थम मार्गाविरोधेन, यानी मार्ग से अविरोध रूप से तप्यते इति तपः। नहीं तो कोई अपने मन से कोई भी तप कर लेता है उसको तप नहीं कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था एक तो अनेशन किसको कहा था और अनशन किसको कहा था। हमने देखा था कि एशन की इच्छा ही नहीं होना वो अनेशन था, और फिर अनशन की प्रतिज्ञा करते उस पर, तो अनेशन को साधन कहा था, अनशन उसका फल बताया था। यानी 55 पेज पर नीचे से चौथी लाइन में लिखा था लास्ट में, भोजन रूप क्रिया की व्यावृत्ति अनशन है और भोजन की इच्छा न होना अनेशन है। अनशन और अनेशन में दो डिफरेंस बताया। यानी अनेशन किसको कहा था तो उसमें बताया था कि 4 प्रकार के आहार में से 1, 2 या 3 प्रकार के आहार का जो त्याग करते हैं उनमें उनके भी अनेशन तप माना गया, उनके भी लिखा था। अब यहाँ हम 56 पेज पर आते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे पहली लाइन से, आधे आहार का नियम करना अवमौदर्य तप है, यानी भूख से कम जो जिसका प्राकृतिक आहार है। नहीं तो आप कहेंगे किसी कोई तो 8 रोटी खाता है और हमेशा हम 2 रोटी खाते हैं तो हम चौथा खा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना। हमारा फुल डाइट कितने 2 रोटी का है तो उसमें कम करना। हाँ, तो जो जिसका प्राकृतिक आहार है उससे न्यून आहार विषयक अभिग्रह करना यानी प्रतिज्ञा करना अवमौदर्य तप है, यानी पहले से प्रतिज्ञा करके उतना कम करेंगे। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, उसमें प्रकृतिस्थ पुरुष और स्त्रियों के आहार का कथन करते समय यह गाथा आती है। यानी कितने ग्रास को कहते हैं, आहार कहते हैं, उसके लिए ऊपर एक गाथा आई है, 7 नंबर लिखा है वहां पर, बत्ती समकिर कवला आहारो कुच्छि पूरणो भनिदो पुरिषस महिली आए 28 हवे कवला। उदर पूर्ति के निमित्त, उदर है पेट भरने के निमित्त, उदर की पूर्ति है पेट भरना, पुरुष का 32 ग्रास और महिला का 28 ग्रास आहार कहा है, आज गिनना कितने खाते हो। हमने कभी ग्रास कभी गिने ही नहीं। और वो कल वो भी आते हैं कि 1000 चावल का एक ग्रास, पता नहीं इतना 1000 कितने होता होगा। कल था इसी में से लिया है, आएगी आगे। तो कहते शंकाकार पूछते एक ग्रास का क्या प्रमाण है। हाँ, अभी मुनिराज के लिए एक ही समय में होता है ना। तो एक ग्रास का क्या प्रमाण है, ग्रास को किसको ग्रास कहेंगे। समाधान, शाली धान्य के 1000 चावलों का जो भात बनता है वह सब एक ग्रास होता है, यह प्रकृतिस्थ पुरुष का ग्रास कहा है। प्रकृतिस्थ ने मेरे ख्याल से हेल्दी, हाँ वो हेल्दी हो ना, जिसको हम कहते हैं हेल्दी युवा। ऐसे 32 ग्रासों द्वारा प्रकृतिस्थ पुरुष का आहार होता है और 28 ग्रासों द्वारा महिला का आहार होता है। प्रकृत में इस ग्रास और इस आहार का ग्रहण न कर, क्या कहा, अभी जिसका जो प्राकृतिक आहार है उसको ही ग्रहण करना, जो जिसका प्राकृतिक ग्रास और प्राकृतिक आहार है वह लेना चाहिए, कारण कि सबका ग्रास और आहार अवस्थित एक समान नहीं होता। ये तो हमें पता है ना, क्योंकि कितने ही पुरुष एक कुड़ाव प्रमाण चावलों के भात का और कितने ही पुरुष एक गलस्थ प्रमाण चावलों के भात का आहार करते हुए पाए जाते हैं। अभी ये यूनिट्स भी हमको मालूम नहीं, कुलव क्या होता है और गलस्थ क्या होता है। हाँ, कुड़ाव बड़ा बड़ा होगा, कलस्थ कम होगा। इसी प्रकार ग्रास भी अनवस्थित पाया जाता है, कोई बड़ा बड़ा कवल लेता है, कोई छोटा छोटा, इतना इतना। इसलिए अपना अपना जो प्राकृतिक आहार है उससे न्यून आहार के ग्रहण करने का नियम अवमौदर्य तप होता है, यह बात सिद्ध होती है। फिर शंकाकार पूछते यह तप किन्हें करना चाहिए। समाधान, जो पित्त के प्रकोषवश उपवास करने में असमर्थ है। देखो पहले तो वो अनेशन के कारण वो उपवास की प्रतिज्ञा की जाती है, अगर पित्त प्रकोप या कोई एसिडिटी जो अन्य जो कारण है, जो असमर्थ है जिन्हें आधे आहार की अपेक्षा उपवास करने में अधिक थकान आती है, जो अपने तप के महात्म्य से भव्य जीवों को उपशांत करने में लगे हैं, जो अपने उदर में कृमि की उत्पत्ति का निरोध करना चाहते हैं और जो व्याधिजन्य वेदना के निमित्तभूत, व्याधि यानी शरीर की जो कुछ बीमारी है उसके वेदना के निमित्तभूत अति मात्रा में भोजन कर लेने से, क्या कहा, अति मात्रा में भोजन किसका कारण है, व्याधिजन्य वेदना, अति मात्रा में भोजन करने से शारीरिक बीमारियां होती है, उसकी पीड़ा भी होगी। तो अति मात्रा में भोजन कर लेने से स्वाध्याय के भंग होने का भय करते हैं। ये तो क्योंकि देखो अति मात्रा में भोजन करते तो जिसको कहते हैं प्रमाद बढ़ता है, नींद आती है, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं कि क्या जाग रहे हैं, पता नहीं चलता है। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, परीक्षा आती है तो क्या हम जागना है, तो नेचुरली हमारी कम खाना होता है, ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, थोड़ा कम खाएंगे तो हमको जागना है, इस तरह से हो जाता है सहज। उन्हें यह अवमौदर्य तप करना चाहिए, ये चाहिए वाली भाषा होती है, वो चरणानुयोग की होती है, उनके सहज ऐसे तप होते हैं, द्रव्यानुयोग की भाषा में हम कहेंगे तो। यानी ऐसा कहना कुछ गलत नहीं, क्योंकि यही उसकी कथन पद्धति है उस अनुयोग की। भोजन, भाजन, घर, वाट, ये वाट मराठी में आते हैं ना, वाट यानी रास्ता, छोटी यानी लिखा ना मोहल्ला, जिसको हम गली कहेंगे, यानी कितने गलियों में, ये मुनियों के लिए है ना खास, कितने घर या कितने गलियों में और कितने बार वो जाएंगे। तो कहते भोजन, भाजन यानी
पात्र,
पात्र यानी पात्र में से कितने पात्र में से लेना, ऐसा भी होगा। घर, वाट और दाता, इनकी वृत्ति संज्ञा है, उनको वृत्ति कहेंगे। उस वृत्ति का परिसंख्यान अर्थात ग्रहण करना वृत्ति परिसंख्यान है, यानी उसकी जो लिमिट मर्यादा बांध ली इतने ही के द्वारा ले लूंगा। इस वृत्ति परिसंख्यान में प्रतिबद्ध जो अवग्रह, अवग्रह अभी हमने देखा ना, अभिग्रह अवग्रह अर्थात परिमाण नियंत्रण होता है, वह वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। उसमें हमने परिणाम परिमाण यानी प्रमाण नक्की कर लिया, इतने ही यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यह किन को करना चाहिए वृत्ति परिसंख्यान, ये जो बाह्य तपों की बात चल रही ना, पहला कौन सा लिया हमने, अनशन, फिर उनोदर जिसको अवमोदर्य कहते हैं, अब ये वृत्ति परिसंख्यान, यानी उसमें भी और लिमिटेशंस, किन को करना चाहिए समाधान। जो अपने तप विशेष के द्वारा भव्य जिनों को शांत करके अपने रस रुधिर और मांस के शोषण द्वारा, यानी जो शरीर, जो अवतारिक शरीर है, जो सप्त धातु के थे, मांस रस रुधिर मांस वगैरह शोषण द्वारा इंद्रिय संयम की इच्छा करते हैं, उन साधुओं को करना चाहिए। यानी विशेष तप है, उनके स्थिरता भी विशेष है, और बाह्य में जो ये तप अन्य भी जीव देखते हैं, तो कहते हैं कि ये शरीर का शोषण करना यानी शरीर कृश हो जाना, इंद्रिय संयम की इच्छा करते हैं, उन साधुओं को करना चाहिए। अथवा जो भाजन और भोजनादि विषयक रागादि को दूर करना चाहते हैं, उन्हें करना चाहिए। उस संबंध में राग है तो उसकी परिमाण बांध लिया कि इतना ही ले लूंगा। शरीर और इंद्रियों में रागादि वृद्धि के निमित्तभूत, देखो शरीर और इंद्रियों में जो रागादि की वृद्धि होती है उसके निमित्तभूत दूध, गुड़, घी, नमक और दही आदि रस कहलाते हैं। इनका त्याग करना रस परित्याग तप है, बहुत बार पढ़ा है ना हमने। नहीं नहीं, दूध गुड़ घी नमक ही, इसके नाम भी बहुत बार, क्योंकि मुनियों की जब बातें आती है इसको रस परित्याग कहते हैं, यानी रस गुण के पांच पर्याय उसको यहाँ नहीं लेना है, ये कड़वा कषायला मीठा वगैरह उसकी बात यहाँ नहीं है। शंका, यह रस परित्याग तब किस लिए किया जाता है, उसका समाधान, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की प्राप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि जीवा इंद्रिय का निरोध हो जाने पर सब इंद्रियों का निरोध देखा जाता है। यानी जो खाने की लालसा, तीव्र लालसा है तो उसके तो संयम नहीं रहता, इसलिए उसी का निरोध कर लेते हैं। और सब इंद्रियों का निरोध हो जाने पर जो परिग्रह का त्याग कर राग द्वेष का निरोध कर चुका है, जो त्रिगुप्ति गुप्त है, त्रिगुप्ति गुपेन मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति, यानी आत्मा में स्थिरता, उनका लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा में जो स्थिरता है उसको त्रिगुप्ति गुप्त है। महत्व की बात यह है, केवल बाह्य में ये रस छोड़ा वो रस छोड़ा ये बात नहीं, मूल बात तो अंतरंग में स्थिरता की है। और ये जो अंतरंग में स्थिरता है तो उसके और अधिक उसमें उपयोग लगाने के लिए ये सब बाह्य निमित्त कहने में आते हैं। स्थिरता ही नहीं होगी तो ये निमित्त किसका कहेंगे। को त्रिगुप्ति गुप्त है जो पांच समितियों से मंडित है और वसूला और चंदन में समान बुद्धि रखता है, उसके प्राणों के असंयम का निरोध देखा जाता, असंयम का निरोध है संयम। वसूला ने कोई साधारण, क्योंकि चंदन और वसूला कहने से ऑर्डिनरी कोई लकड़ी होगी वसूला, वसूला उसको भी कहते हैं ना, वो तो पटाशी नहीं, पटाशी को कहते वसूला, वसूला शब्द पहले आया था कहीं पर पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं, जाने दो। यानी इष्ट अनिष्ट ऐसी कोई वस्तुएं नहीं लगती, बस इतना ले लो। सुगंधी है हाँ, और ये ऑर्डिनरी कुछ लकड़ी होगी। वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण प्रदेश में आकाश के नीचे आतापन योग। निरावरण प्रदेश यानी जो कोई ढका हुआ नहीं है, यानी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसा खुले आकाश। आतापन योग यानी वो धूप है कुछ है तो भी कोई बिना छांव के वहां तप करना, कहेंगे उसमें आत्मा में स्थिरता होकर बैठ जाना, आसन धारण करना। पल्यंकासन, कुक्कुटासन, ये अलग अलग पल्यंकासन है जो
पद्मासन,
हाँ पद्मासन कहो या जो हम कहें पद्मासन, कुक्कुटासन, गोदोहासन यानी गाय को जो दोहते हैं तब कैसे इसे दो पैर पर बैठ के करते, उसको गोदोहासन कहते हैं। अर्ध पल्यंकासन, अर्ध पद्मासन जिसको सिद्धासन भी कहते हैं, एक पैर ऊपर लेना दूसरा सीधा रखना नीचे। वीरासन, वीरासन समझते ना, घुटने ऐसे मोड़कर घुटनों पर बैठते हैं। मृतकवत शयन अर्थात मृतकासन, शवासन जिसको कहेंगे, तथा मकर मुख और हस्तिशुंडादि आसनों द्वारा जो जीव का दमन किया जाता है वह काय क्लेश तप है। अलग अलग अटपटे आसनों में बैठकर परंतु आत्मा में स्थिरता करना है, शरीर का लक्ष्य छोड़कर वो आसन करते हुए उसी का लक्ष्य करना है, ये बात नहीं है वहां पर। वो किए थे ऐसे कथन है, परंतु ऐसा कहीं वो तो शास्त्र का आधार नहीं उसके लिए। ये तो गोदोहासन महावीर भगवान ने किया था ऐसा कहते हैं वो, नहीं वो तो पद्मासन या पल्यंकासन में होता है, खड़गासन होता है या इसमें, गोदोहासन उनके नहीं होगा ये जो। हाँ अभी कभी पूर्व में, अंत में तो नहीं होता है, क्योंकि बाद में तो उनके तो पद्मासन या तो खड़गासन ही होता है वो सब जगह, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मिथ्या भ्रमण है। ये सब कहते हैं ना बाद में सब खोटी रचना कर दी है, मनगढ़ंत बातें हैं। पद्मासन या खड़गासन नहीं होते, हाँ वो तो पहले पूर्व अवस्था में हो गए खड़गासन, हाँ खड़गासन पद हमने केवली समुद्रात में दो ही देखे थे ना, पूर्व भी पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख, ऐसा ही उनका स्वरूप है। यह किस लिए किया जाता है? समाधान, शीत वात और आतप के द्वारा, बहुत उपवासों द्वारा, तृषा क्षुधा आदि बाधाओं द्वारा और विसंस्थूल आसनों द्वारा, यानी जो अटपटे जो आसन है उनके द्वारा ध्यान का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। यानी वो ध्यान में आत्मा में स्थिरता ही करना मुख्य है, वो आसनों का अभ्यास नहीं करना है, करना तो अभ्यास ध्यान का है, परंतु प्रतिकूलता में भी अधिक स्थिरता करने का अभ्यास करना है, बस इतना उसका अर्थ होता है। क्योंकि जिसने शीत बाधा आदि और उपवास आदि की बाधा का अभ्यास नहीं किया है और जो मारणांतिक असाता से खिन्न हुआ है उसके ध्यान नहीं बन सकता। पहले से जिसने अलग अलग इसमें प्रैक्टिस की है तो कैसे भी प्रतिकूलता में उसका ध्यान बन जाता है। मारणांतिक यानी मरण के पूर्व में जो उस समय की जो बात है उसमें उनके ध्यान की स्थिरता होनी चाहिए। ध्यान और ध्येय में विघ्न के कारणभूत, ध्येय क्या है? ये शुद्धात्मा जिसको हम कहेंगे, अभी ये नियमसार में विषय चल रहे हैं, पंचम पारिणामिक भाव स्वभाव भाव। तो ध्यान, ध्यान तो ये पर्याय है, और ध्येय में विघ्न के कारणभूत स्त्री पशु और नपुसक आदि से रहित गिरी की गुफा, गिरी यानी पर्वत, पर्वत की गुफा, कंदरा, कंदरा समझते ना, गुफा तो अंदर कोई ऐसी हॉलो स्पेस होती है, कंदरा यानी उसमें कोई ऐसे अभी कैसे गिरी कंदर के, हाँ थोड़ी अंदर से ऐसी थोड़ी जगह होती है, हाँ नैरो होती है गुहा, गुफा जैसा नहीं होता है पूरा, थोड़ी स्पेस अंदर ऐसे पर्वत के बीच में थोड़ी, न पर्वत में हम कहेंगे वो तो फट तो बहुत छोटी हो गई, परंतु जिसमें आदमी जाके बैठ सके अंदर ऐसे गिरी कंदर कहते, पभार यानी गिरी गुफा, स्मशान शून्य घर, आराम और उद्यान आदि प्रदेश विविक्त कहलाते, यानी जहाँ कोई जीवों का अन्य लोगों का आना जाना नहीं है, हाँ शून्य घर ने जो निवास छोड़ दिया है, हाँ कोई नहीं रहता है, क्योंकि कभी ऐसे होते ना जैसे पड़े ऐसे क्या कहेंगे उसको, हाँ खंडहर जैसे, यानी जहाँ कोई पशु नहीं रह रहे, कोई पशुओं का आना जाना नहीं होगा, गुफाओं में भी पशु कहीं निवास करते उनकी उसकी वहाँ नहीं, जो रिक्त है यहाँ लिखा ना स्त्री पशु नपुंसक आदि से रहित ऐसी जो जगह होगी उसको विविक्त कहेंगे, वहाँ शयन और आसन का नियम करना विविक्त शयनासन नाम का तप है, यानी ऐसी जगह में जाकर तप करना उसको कहेंगे विविक्त, यानी एकांत में अकेले में जाकर जहाँ अन्य जीवों का आना जाना नहीं है ऐसे प्लेस में, शय्यासन शयनासन एक ही बात है, यहाँ लिखा ना शयन और आसन का नियम करना। शंका, यह विविक्त शयनासन तप किस लिए किया जाता है? समाधान, असभ्य जनों के देखने से और उनके सहवास से उत्पन्न हुए त्रिकाल विषयक दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी उनको देखने से कोई विकल्प नहीं हो, भूत भविष्य वर्तमान की बात है तो उन दोषों को दूर करने के लिए, इस विषय में श्लोक है। ऊपर पढ़ते हैं, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्त्वम् आध्यात्मिकस्य तपसः परिब्रह्मणार्थम् ध्यानम् निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वयेव वृतिशे अतिशयोपपन्ने अतिशयोपपन्ने। उसका अर्थ देखते हैं, देखो नीचे लिखा ना अभी, हे कुंथु जिनेन्द्र, आपने एक किस्में से लिया है ये आठ नंबर का बृहस्व, अभी बृहस्व किस्में से लिया लिखा नहीं, यानी चौबीस तीर्थंकरों का जो शायद वो लघु तत्व स्फेट में था क्या, याद नहीं है, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो, हे कुंथु जिनेन्द्र, आपने आध्यात्मिक तप को बढ़ाने के लिए अत्यंत दुश्चर बाह्य तप का आचरण किया और प्रारंभ के दो मलिन ध्यानों को छोड़कर अतिशय को प्राप्त उत्तर के दो ध्यानों में प्रवृत्ति की। आप बताएंगे पहर प्रारंभ के दो कौन से मलिन ध्यान हैं और बाद के दो कौन से अच्छे हैं? आप बताना चाहते आर्द्र रोधन मलिन, हाँ फिर बाद में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो प्रारंभ के दो मलिन ध्यान यानी आर्द्र और रौद्र ध्यान, चार प्रकार के, हर एक में चार चार प्रकार है वो बात अलग है, और अतिशय को प्राप्त उत्तर दो ध्यान यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसको धर्म भी कहते हैं धर्मीय भी कहते हैं। इस प्रकार यह छह प्रकार का बाह्य तप कहा, बाह्य यानी अन्य जीव भी उसको समझते हैं जान सकते हैं। शंका, इसकी बाह्य संज्ञा किस कारण से है? समाधान, यह अपने से पृथक भूत मिथ्या दृष्टियों के द्वारा भी जाना जाता है, इसलिए इसकी बाह्य संज्ञा है। लोग इसको समझ सकते हैं कि अनशन किया, अनुमोदरी किया वगैरह, ये सभी जो अभी हमने देखे वो कौन कौन से बाह्य तप बताएंगे? अनशन, हाँ, अमनोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शयनासन, ये छह हो गए। अब छह प्रकार के आभ्यंतर तप के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा तपों की बात लिखी है क्या है कहा? एकासन तप कहाँ है? नहीं नहीं, करना वो बात अलग है। देखो देखो उसमें आया ना, देखो एकासन, नहीं 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 वो उसमें आया था। देखो देखो हमने क्या देखा था उसमें, निकालो। लौकिक में चलता है उसमें लिखा है, देखो पेज नंबर 55 सेकंड लाइन, उसमें चौथे छठे आठवें दसवें बारहवें ऐशन का त्याग करना, वो क्या है? एक दिन में दो आसन माने हैं तो इस तरह से, यानी पहले एक दिन में एक भोजन लेना, एक का त्याग करना, वो उसमें आ गया। इस तरह से आते हैं। हाँ देखो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, मैं कुछ अलग बात बताते बताते उस पर गए, मैं फिर जब याद आ गए तो बताऊंगी। ये बाह्य संज्ञा है। अब छह प्रकार के अभ्यंतर तप के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा संवेग और निर्वेद से युक्त अपराध करने वाला साधु अपने अपराध का निराकरण करने के लिए क्या कहा? संवेग और निर्वेद किसको कहा? इस संसार देह के प्रति अरुचि जिसको कहेंगे वो है संवेग, और जो देव शास्त्र गुरु के प्रति अहोभाव कहो, भक्ति कहो, राग कहो, उसको भी संवेग और निर्वेद में दोनों आ जा गए। यानी है तो संवेग और निर्वेद उनके, परंतु फिर भी जो कुछ दोष लगता है तो अपराध करने वाला अपराध, यानी वो जो मिथ्या दृष्टि तीव्र संक्लेश वाला अपराध करता है, ऐसा जो लौकिक अपराधों की बात नहीं है, किसी का खून किया है, किसी की चोरी की, वो बात नहीं है, जो कुछ दोष लगे हैं उनके विचारों में, तो कहते साधु अपने अपराध का निराकरण करने के लिए जो अनुष्ठान करता है वह प्रायश्चित नाम का तप कर्म है। इस विषय में श्लोक है। संसार देह और नहीं, देखो देखो संवेग और निर्वेद से युक्त अपराध करने वाला साधु, यानी वो संवेग और निर्वेद से युक्त है फिर भी अपराध हुआ है, वो अपने अपराध का निराकरण करेगा ना? अपराध को उससे युक्त, संवेग से युक्त अपराध नहीं लेना, संवेग से युक्त साधु लेना। देखो ऊपर देखो, श्लोक पढ़ेंगे नौवा नंबर का। प्राय इत्युच्यते लोकश्चित्तं तस्य मनो भवेत् तच्चित्त ग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्। प्राय यह पद लोकवाची है और चित्त से अभिप्राय उसके मन का है, इसलिए उस चित्त को ग्रहण करने वाले कर्म प्रायश्चित्त है ऐसा समझना चाहिए। यहां ग्राहक में ग्राह्य का उपचार करके चित्त ग्राहक कर्म की, कर्मणीय क्रिया, चित्त संज्ञा दी है। अब दस नंबर का हमने जो विषय परिचय में देखा था ना, वो सब यहाँ आने वाला है। हाँ। 10 नंबर का श्लोक पहले ऊपर पढ़ेंगे। कृतानि कर्माणि अति दारुणानि तनु भवन्त्यात्म विगर्हणेन प्रकाशनात् संवरणाच्च तेषां अत्यंत मूलोद्धरणं वदामि। अपनी गर्हा करने से, दोषों का प्रकाशन करने से और उनका संवर करने से किए गए अति दारुण कर्म कृश हो जाते हैं। कृतानि कर्माणि अति दारुणानि, जो अति दारुण कर्म किए हैं, तनु भवन्ति यानी वो कृश किए जाते हैं। किससे? आत्म विगर्हना, अपनी गर्हा करना, यानी अपनी जो किए हुए दोषों की निंदा स्वयं करना, उसको गर्हा कहते हैं। गर्हा यानी वो गुरु के सामने करना, उसको गर्हा किया जाता है। प्रकाशनात्, उसका प्रकाशन करने से, और संवरणात्, उसका रोकने से। अब उनका समूल नाश कैसे हो जाता है यह कहते हैं। अब वो समूल नाश करने के बाद में 11 में बताएंगे। अब यहाँ कहते हैं, यह प्रायश्चित आलोचना प्रतिक्रमण उभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद मूल परिहार और श्रद्धान के भेद से 10 प्रकार का है। इस विषय में गाथा, ये जो 10 प्रकार बताएंगे तो ये गाथा में बताए गए हैं। अलोयन पड़ी कमणे उभय विवेगे तहा उत्सगो तव छेदो मूलं पिय परिहारी चेव सद्दहना। आलोचन प्रतिक्रमण उभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद मूल परिहार और श्रद्धान, ये हुआ है, ये प्रायश्चित्त के 10 भेद है। अपरिश्रव अर्थात आश्रव से रहित श्रुत के रहस्य को जानने वाले, ये गुरु का विशेषण चल रहा है। क्या कहा? गुरु, गुरु तो कहते अपरिश्रव ने आश्रव से रहित श्रुत के रहस्य को जानने वाले वीतराग और रत्नत्रय में मेरु के समान स्थिर ऐसे गुरुओं के सामने अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना नाम का प्रायश्चित्त है। ये जो क्रियाओं की बात है ना यहाँ पर, तो इसको आलोचन प्रायश्चित कहते हैं। और अभी जो नियमसार में जो बात अपनी चल रही है, आलोचना यानी आलोचन करना यानी देखना जानना किसको, तो राग दोषों से रहित अपना जो स्वभाव भाव है उसको देखते रहना। यानी यहाँ क्रियाओं क्या होती है, बाह्य में ऐसे बोल के वो दोषों का निराकरण किया जाता है, ये जो प्रायश्चित अलग अलग बताए वो करके, फिर अपने अंतरंग में स्थिर होना, ये सचमुच प्रायश्चित है। प्रायश्चित अपनी आत्मा में स्थिरता हो जाना आता है, व्यवहार होते हैं, पर ये करने से निश्चय ज्यादा होता है ऐसा नहीं है, पर ये व्यवहार, तभी तो ये क्रियाओं का वर्णन चल रहा है ना यहाँ पर। और शरणानुयोग में ये बाह्य क्रियाओं की तो बात चलेगी यहाँ, तो इस तरह से वो किया जाता है। तो कहते हैं ये आलोचन की बात चल रही है, फिर से पढ़ते हैं। गुरु कैसे? तो आश्रव से रहित श्रुत को रहस्य को जानने वाले वीतराग और रत्नत्रय में मेरु के समान स्थिर ऐसे गुरुओं के सामने अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना नाम का प्रायश्चित है। गुरुओं के सामने आलोचन किए बिना संवेग और निर्वेद से युक्त साधु का है ना, साधु के लिए विशेषण आया नहीं, अपराध के लिए नहीं था। फिर से कभी ऐसा न करूंगा यह कहकर अपराध से निवृत्त होना प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। पहले में पहले क्या गया? अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना बताया था, और फिर वो फिर से ऐसा नहीं करूंगा, ये जो दोष हुए है अभी इसको टालूंगा, या अपराध से निवृत्त होना प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। शंका, यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित कहाँ पर होता है? समाधान, जब अपराध छोटा सा हो और गुरु समीप न हो तब यह प्रायश्चित होता है। प्रतिक्रमण यानी स्वयं कर लेना कि ये मेरे दोष हुए, इसको मैं छोड़ता हूँ या ऐसा नहीं करूँगा। अपने अपराध की गुरु के सामने आलोचना करके गुरु की साक्षी पूर्वक अपराध से निवृत्त होना उभय नाम का प्रायश्चित है। यानी दोष बताकर जो प्रतिक्रमण करना है वो आलोचना और प्रतिक्रमण मिलकर उभय कहेंगे उसको, उसमें आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है। ये देखो मिथ्या दृष्टि ये ऐसे भाव करता है, वो उसका थोड़ा शुभ भाव है। ये तो मुनियों के तपों की बात है। ये 12 प्रकार के तप मुनियों के होता है जिनको आत्मा में इतनी स्थिरता है, और इनका दोष यानी कैसा, जैसे हमारे सामने तो वो दोष नगण्य जो है, परंतु उनके तो पकड़ में आता है तो उसका वो दोषों का निराकरण करते हैं। तो ये सब सारे प्रायश्चित के भेद बताए जाते हैं कि मुनि आचार्य उनके सामने दोषों का प्रकट करना वो आलोचना है, और फिर प्रतिक्रमण है वो दोष नहीं करूंगा ऐसे प्रतिज्ञा, फिर दोबारा दोनों करना उसको नाम उभय है। शंका, यह उभय प्रायश्चित कहाँ पर होता है? समाधान, यह दुस्वप्न देखने आदि अवसरों पर होता है। गण, गच्छ, द्रव्य और क्षेत्र आदि से अलग करना विवेक नाम का प्रायश्चित है। यानी जो आचार्य है उनको गण से दूर करेंगे, उनको आज्ञा देंगे कि इस तरह से करना है। यह विवेक प्रायश्चित कहाँ पर होता है? समाधान, पेज नंबर 61, जिस दोष के होने पर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता, उस दोष के होने पर यह प्रायश्चित होता है। यानी वो तो मुनि संग से दूर रखते हैं उनको, जैसे हम जिसे वो जो ऐसा अपराध है उसके लिए जिसे सजा जैसे होता है ना, वैसे उनके ये आचार्य उनको बता देते हैं। उभय शब्द की अनुवृत्ति होने से उपवास आदि के साथ जो गच्छादि के त्याग का विधान किया जाता है उसका अंतर्भाव इसी विवेक प्रायश्चित में हो जाता है।
उभय शब्द
गच्छ का त्याग नहीं, वो तो जैसे ना गच्छ गण जो बताया है, तो जैसे आप में अभी चलते ना अमुक गच्छ है तमुक गच्छ है वैसा वो गच्छ।
ये उभय शब्द की अनुवृत्ति क्या है?
अनुवृत्ति कंटिन्यूटी, वहाँ लिखा है ना उभय क्या है, आलोचना प्रतिक्रमण।
अच्छा,
आलोचना भी हुआ प्रतिक्रमण भी हुआ। तो उपवास आदि के साथ गच्छादि का त्याग यानी प्रायश्चित, ये जो क्या है वो अंतरंग तप भी कहने थे, उसके साथ वो उपवास आदि का भी होगा, यानी बाह्य तप के साथ ये इसका गण का त्याग वगैरह जो कुछ होगा उसका अंतर्भाव इसी विवेक प्रायश्चित में हो जाता है। अब कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग करके यानी शरीर का लक्ष्य छोड़कर है ना, ध्यान पूर्वक एक मुहूर्त, एक दिन, एक पक्ष और एक महीना आदि काल तक स्थित रहना व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। यहाँ पर भी द्विसंयोग आदि की अपेक्षा भंगों की उत्पत्ति करनी चाहिए, क्योंकि उभय शब्द देशामर्शक है। भंग ने अलग अलग तपों को एक साथ उपवास के साथ या अन्य के साथ इस तरह से। शंका, यह व्युत्सर्ग प्रायश्चित किसके होता है? समाधान, जिसने अपराध किया है किंतु जो अपने विमल ज्ञान से नौ पदार्थों को समझता है, वज्र सहनन वाला है, शीतवात और आतप को सहन करने में समर्थ है तथा सामान्य रूप से शूर है, ऐसे साधु के होता है। उपवास, आचामल, निर्विकृति और दिवस के पूर्वार्ध में एकासन तप है। यहाँ द्विसंयोगी भंगों की योजना कर लेनी चाहिए। अभी इसके लिए जो सारे चरणानुयोग के ग्रंथ है ना, उसमें से ये सारे इसका विस्तार से समझ सकते हैं। आचामलक यहाँ उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है, जरा वहां से जब संयम प्रकाश निकालो तो सही। ऊपर के उसमें वो कपाट खोलो, ऊपर के जाओ राइट साइड में, लाल कलर के चार ग्रंथ है, उसमें मुनि धर्म लिखा हुए दो ग्रंथ है। साइड में लिखे हुए मुनि धर्म लिखा है, मुनि धर्म है क्या लिखा है? हाँ मुनि धर्म लिखा है ना। हाँ बस नहीं, ये वो अलग है, ये अलग है, इसमें किसमें से लिखे वो हमको इंडेक्स देखना पड़ेगा। देख लो उसमें से, इसमें भावना है तब किसमें देखना है आपको, तीन लोग की रचना है, निगर भावना, ध्यान शुद्धि, विषय सूची, मरण, आचामल तप मिला मुझे। हाँ 814 उसमें नहीं है। हाँ वो ये दो भाग अलग अलग है, ये उसका कॉपी नहीं है। हाँ मैं अभी बहुत सारे बातें इसमें, हम अपने से आचामल क्या है उसको देखते हैं। ये संयम प्रकाश में से मैं पढ़ रही हूँ, 814 नंबर का पेज है, ये द्वितीय भाग है, मुनि धर्म का द्वितीय भाग। प्रश्न ये पूछ रहा है, मैं यहाँ पूछा गया है, संलेखना के कारणभूत उक्त तप, उक्त जितने तप वर्णन किए गए उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो शरीर को कृश करने के निमित्त भूत जो तप है वह अनेक है, किंतु उनमें आचामल तप सर्वश्रेष्ठ है। तो आचामल तप की विधि क्या है? इतने बेला, तेला, चोला और पंचोला तक के उपवास के अनंतर पारणे के दिन परिमित और शीघ्र पचने वाली कांजी का आहार प्रायः साधु किया करते हैं, अर्थात आत्मा में संक्लेश उत्पन्न न हो इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार बेला यानी 2 दिन का उपवास, तेला यानी 3 दिन का उपवास, चोला यानी 4 दिन का उपवास, अधिक से अधिक पंचोला 5 दिन का उपवास करे। जिस दिन पारणा हो उस दिन परिमित और लघु यानी शीघ्र पचने वाला कांजी भोजन करे, इसे आचामल भोजन कहते हैं। इसमें श्लोक दिया उसका अर्थ डायरेक्ट मैं पढ़ती हूँ। आचामल तपस्या का इच्छुक संयमी प्रथम 2 दिन का उपवास करे और अपने चित्त में संक्लेश न हो, शांति का अनुभव होवे, तब 3 दिन का उपवास करे। उतने उपवास से भी आत्मा में संक्लेश भाव न हो तो 4 दिन का उपवास करे, पश्चात 5 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा करे, प्रत्येक पारणे के दिन परिमित और लघु कांजी का भोजन करे। यानी ये जो समाधि मरण के समय जो भक्त प्रत्याख्यान किए थे, कितना भोजन का जो त्याग वगैरह, उसमें ये आता है। ये संलेखना के अनेक उस भेदों में से ये लिया है आचामल तप। हाँ वो, हाँ वो पचने वाला और जो थोड़ा जो है कांजी वगैरह का 814 आचामल तप, संयम प्रकाश। मुनि धर्म का पेज 814 निर्विकृति उसमें नहीं है, क्योंकि ये तो संलेखना के भेदों की बात है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं। नहीं, उसमें नहीं होगा, ये भक्त प्रत्याख्यान में ही आते हैं। अभी हमने किसमें 814 में देखा था ना, देखो अभी जो हमने सब देखे ना, अनशन, अध अनशन और सर्व अनशन, अध्ययन अध का अर्थ होता है काल, चतुर्थ श्रेष्ठ आदि से लेकर 6 मास पर्यंत का काल अध्या शब्द से लिया है। चतुर्थ का अर्थ होता है एक उपवास, 6 मास तक के उपवास को अध्यानशन कहते हैं। बहुत विस्तार है इसके अंदर। अभी हमने जो देखा था ना, 1000 चावलों का 1 ग्रास माना है वगैरह वगैरह, रस परित्याग तो अभी हमने देखे है, दूध दही घृत तेल गुड़ अभी हम इसमें से ही पढ़ेंगे। यहाँ तो इतना उसमें डिटेल्स है, सबके हाथ में यह है नहीं, आपके उसमें अलग विषय है। हाँ, ये पुस्तकें बाद में अवेलेबल हो रही थी, कहाँ मैंने पूना में देखी थी, कहीं से कोटा या कहीं से प्रसिद्ध हुई थी, बहुत अच्छी है वो। ये तो मिल नहीं रही थी ना कहीं,
कॉपी किया
एक, आपके पास है? हाँ, जेरोक्स करके लिया था। अच्छा, अभी छपी है, अभी नई पुणे में मैंने देखी थी, कोटा से छपी है। यह तब प्रायश्चित किसे दिया जाता है? तो यहाँ प्रायश्चित में वो ले, और वहां तो संलेखना के अंतर्गत उसका वर्णन है। समाधान, जिसकी इंद्रिया तीव्र है, जो जवान है, बलवान है और सशक्त है, ऐसे अपराधी साधु को दिया जाता है। देखो ये तो केवल अपराध होने पर ही ग्रहण, ये तो प्रायश्चित में आया इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे भी इसका यानी व्रतों का ग्रहण कर लेते हैं। एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन और एक वर्ष आदि तक की दीक्षा पर्याय का छेद कर इच्छित पर्याय से नीचे की भूमिका में स्थापित करना छेद नाम का प्रायश्चित है। यानी उनकी सीनियोरिटी कम हो जाती है ना वो मुनि की। यानी इतने मान लेते हैं 10 वर्ष से दीक्षित है, तो उसमें से 1 वर्ष का छेद कर लिया तो वो 9 वर्ष के दीक्षित माने जाएंगे। यह छेद प्रायश्चित किसे दिया जाता है? पेज नंबर 62 पर, जिसने अपराध किया है तथा जो उपवास आदि करने में समर्थ है, सब प्रकार बलवान है, सब प्रकार शूर है और अभिमानी है, ऐसे साधु को दिया जाता है। समस्त पर्याय का विच्छेद कर पुनः दीक्षा लेना मूल नाम का प्रायश्चित है। यानी पूरी दीक्षा का ही छेद होना। पहले कौन सा था? छेद में थोड़े दिन का, यानी 1 दिन का, 1 मास का, इस तरह से छेद किया जाता था। ये तो पूरे के पूरा, यानी फिर दोबारा दीक्षित होना पड़े, ऐसा ही है, उसको मूल कहते हैं। यह मूल प्रायश्चित किसे दिया जाता है? समाधान, अपरिमित अपराध करने वाला जो साधु पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील और स्वच्छंद आदि होकर कुमार्ग में स्थित है उसे दिया जाता है। यानी पूरा दीक्षा का छेद करके फिर दोबारा दीक्षित कर लेते हैं। जैसे पहले भी जो शिथिलाचार हुआ था ना, ये 12 वर्ष का उपवास, ये दुकाल आया था और जो भद्रभाव वगैरह वापस लौट कर, यानी जब मुनि संघ वापस आया था तो ये उनको तो पूरा ही दोबारा दीक्षा लेने की बात बताई थी, कितनों ने ग्रहण की और कितनों ने वो वही चलाया। परिहार दो प्रकार का है, अनवस्थाप्य और पारंचिक। उनमें से अनवस्थाप्य परिहार प्रायश्चित्त का जघन्य काल 6 महीना और उत्कृष्ट काल 12 वर्ष है। वह काय भूमि से दूर रहकर ही विहार करता है। ये काय भूमि किसको कहना, उसकी बात इसमें नहीं आई थी। उसमें कुछ प्रायश्चित के भेद, उसमें तपों के भेद है ना, इसमें संलेखन है, उसमें तप है, जरा देख लो। होगी उसके अंदर, यानी इसमें तो इसमें संलेखना के विषय में उसको ले लिया है। लाओ इसमें। हाँ, मूल छेद वगैरह प्रायश्चित्त के भेद जो अभी हमने 10 भेद दिए थे वही है यहाँ पर। अभी हम कौन सा देख रहे थे, मूल। अच्छा अच्छा कुछ काल के लिए उसे बहिष्कृत करना परिहार है। यहाँ उसके दो के गण प्रतिबद्ध और गणा प्रतिबद्ध। ये अलग प्रकार से इसमें उनके भेद कर दिए, यानी कुछ काल के लिए उनको बहिष्कृत करना। हाँ, काय भूमि से दूर रहकर ही विहार करना, प्रतिबंधना से रहित होना, मैंने उनको वापस नहीं करेंगे प्रतिबंधना।
ये काय भूमि का क्या बताया आपने?
कुछ नहीं बताया इसमें। यहाँ तो ऐसी बात, यहाँ गण प्रतिबद्ध और गण अप्रतिबद्ध ऐसे बताया था उसमें। यहाँ जो लिखा है मैं 410 पेज से पढ़ती हूँ, संयम प्रकाश में से। जहाँ पर अन्य साधु लघु शंकादि निवारण करते हैं ऐसे स्थान में अपराधी साधु को ठहराना, अपराधी पिच्छी को आगे करके अन्य साधुओं की वंदना करता है। ये तो नहीं, नहीं वो तो अलग बात है। यानी अन्य साधुओं को पिच्छी ऐसा लेकर वंदना कर की जाती, हाथ में पकड़कर, उसको कोई भी साधु वंदना नहीं करता, यानी प्रतिवंदना नहीं करते। इस प्रकार गण में रखकर जो क्रिया की जाती है उसे गण प्रतिबद्ध परिहार कहते। गण में तो रखा परंतु वो मूल भूमि से अलग रखा उनको। गण प्रतिबद्ध, जिस देश में लोग धर्म को नहीं समझते हैं उस देश में मौन पूर्वक परिमित काल तक तपश्चरण करने का दंड देना गण अप्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित्त है। इसी में ये दो बात बताए होंगे, वही बात बता रही, उसी के नाम अलग बताए हैं। देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखो मैंने समय था। ये अनवस्थाप्य और पारंचिक है ना, तो जघन्य काल 6 महीना उत्कृष्ट 12 वर्ष। वह काय भूमि से दूर रहकर ही विहार करता है, उसके साथ रहता है, परंतु अभी बताए ना जो अन्य जो साधु वहां जो मलमूत्र विसर्जन करते वहां पर उस भूमि में उनको विहार करना, प्रतिवंदना से रहित होता है। गुरु के सिवाय अन्य सब साधुओं के साथ मौन का नियम रखता है, केवल वह आचार्य के साथ बात होगी, बाकी किसी के साथ नहीं। तथा उपवास आचाम्ल दिन के पूर्वार्ध में एकासन और निर्विकृति आदि तपों द्वारा शरीर के रस रुधिर और मांस को शोषित करने वाला होता है। अब पारंचिक तब भी इसी प्रकार का होता है, किंतु इसे साधर्मी पुरुषों से रहित क्षेत्र में, अभी बताए ना वही बात बताई थी, हाँ गण अप्रतिबद्ध है ऐसा कुछ क्षेत्र में आचरण करना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट रूप से 6 मास के उपवास का भी उपदेश दिया गया है। ये दोनों ही प्रकार के प्रायश्चित राजा के विरुद्ध आचरण करने पर 9 और 10 पूर्वों को धारण करने वाले आचार्य करते हैं। अब श्रद्धान नाम का प्रायश्चित, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित हुए जीव के महाव्रतों को स्वीकार कर आप्त आगम और पदार्थों का श्रद्धान करने पर श्रद्धान नाम का प्रायश्चित होता है, यानी दोबारा सम्यक्त्व का ग्रहण होना चाहिए। अब विनय की बात है, ये प्रायश्चित तब की बात है, अभी तक तो जो हमने देखा था। ज्ञान दर्शन चारित्र चाहिए, चरित्र हुआ है, तप और उपचार के भेद से विनय 5 प्रकार का है। रत्नत्रय को धारण करने वाले पुरुषों के प्रति नम्र वृत्ति धारण करना विनय है। इन विनयों का लक्षण सुगम है, इसलिए यहाँ नहीं कहते हैं यह विनय नामक तप कर्म है। यानी ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार। आपत्ति के समय, अभी वैयावृत्य, आपत्ति के समय उसके निवारणार्थ जो किया जाए वह वैयावृत्य नाम का तप है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, तपस्वी, शैक्ष, उपग्लान, कुल, गण, संघ और मनोज्ञों की, ये सब मुनियों के ही नाम है, अलग अलग अपेक्षाओं से बताएं उसको। किसको क्या कहना वो बताएंगे। वैयावृत्य के भेद से वह वैयावृत्य तब 10 प्रकार का है, यानी किसका वैयावृत्य कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से उसका उसके 10 प्रकार बताए। अभी आचार्य, उपाध्याय, साधु तो समझते हैं ना, तो उनमें कुल 5 प्रकार का है। पंचस्तूप कुल, गुफावासी कुल, शालमूल कुल, अशोकवाट कुल और खंड केशर कुल। 3 पुरुषों के समुदाय को गण कहते हैं और इसके आगे गच्छ कहलाता है। महान आपत्ति में पड़े हुए आचार्य से लेकर गण पर्यंत सर्व साधुओं के समूह की बाधा दूर करना संघ वैयावृत्य नाम का तप है। पहले भी ना आचार्य, उपाध्याय, साधु, तपस्वी वगैरह वगैरह, कुल, गण, संघ बताए ना, इसको संघ कहा, यानी वो सब आ गए उसके अंदर। जो आचार्यों द्वारा सम्मत है और जो दीक्षाभिमुख गृहस्थ है उनकी वैयावृत्य करना मनोज्ञ वैयावृत्य नाम का तप है। जो दीक्षा लेने वाले अभी गृहस्थ है उसकी बात है। इस प्रकार यह सब वैयावृत्य नाम का तप है। अभी स्वाध्याय तप की बात है। अंग और अंग बाह्य आगम की, अंग ने 12 अंग और अंग बाह्य कौन से याद है कि भूल गए, 14 प्रकीर्णक, हाँ वो सामायिक, वंदना, चतुर्विंशति, स्थ वगैरह जो है ना वो सब। तो अंग और अंग बाह्य आगम की वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, देखो वाचना तो समझते ना, पृछना यानी उसके बारे में जो कुछ चर्चा जो होगी, प्रश्न भी है, अनुप्रेक्षा यानी उसके, अनुप्रेक्षा कहना यानी उसको वारंवार उसको याद रख करना, परिवर्तना यही है रटना, और धर्म कथा करना स्वाध्याय नाम का तप है। उत्तम सहनन वाले का एकाग्र होकर चिंता का निरोध करना ध्यान नाम का तप है। इस विषय में गाथा ऊपर जमथिरम अज्जवसाणम तम झाणम जम चलंतयम चित्तम तम हो ये भावनावा अनुपेहावा अहव चिंता। जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है। जम थिरम अज्जवसानम, अज्जवसान परिणाम, परिणामों की जो स्थिरता है उसका नाम ध्यान है। और जो चित्त का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना है वह या तो भावना है या अनुप्रेक्षा है या चिंता है। ध्यान के विषय में चार अधिकार है, ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाता है, ध्यान वो क्रिया हो गई, और ध्यान का फल। अब ध्याता किसको होना चाहिए? जो उत्तम सहनन वाला, निसर्ग से बलशाली, निसर्ग से शूर, 14 पूर्वों को धारण करने वाला या 9-10 पूर्वों को धारण करने वाला होता है, या 9 को भी ले लिया, नहीं तो 10 पूर्वी और 14 पूर्वी, ऐसी दो बातें आती है। पूर्वधर कहते हैं उसको, पूर्वविद कहते हैं, वो सूत्र है ना, आद्य च पूर्वविद, यानी आद्य यानी पहले दो शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान चार प्रकार के, तो पहले दो शुक्ल ध्यान जो श्रेणी में होते हैं वो किसको होते हैं? पूर्व विदों को होते हैं, यानी 9 पूर्वी, 10 पूर्वी, 14 पूर्वी उनको होते हैं।
यह सभी जगह उत्तम सहनन वाले बताए, तो जो साधु उत्तम सहनन वाले नहीं होते उन लोग को क्या ये नहीं होता?
ये वाला ध्यान नहीं होता है, श्रेणी वाला ध्यान नहीं होगा।
अच्छा,
धर्म ध्यान होगा उनका। क्या
नहीं,
वज्र ऋषभ नारासन, तीन उत्तम वाले तो उपशम श्रेणी चढ़ते, उपशम श्रेणी चढ़ते। देखो क्या कहते हैं, फिर से पढ़ते, जो उत्तम सहनन वाला, निसर्ग से बलशाली, निसर्ग से शूर, निसर्ग से नहीं नेचुरली स्वाभाविक रीति से, 14 पूर्वों को धारण करने वाला या 9-10 पूर्वों को धारण करने वाला होता है वह ध्याता है। क्योंकि इतना ज्ञान हुए बिना जिसने 9 पदार्थों को भले प्रकार नहीं जाना है उसके ध्यान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शंका, यदि 9 पदार्थ विषय ज्ञान से ही ध्यान की प्राप्ति संभव है तो 14, 10 और 9 पूर्वधारियों के सिवा अन्य को भी वह ध्यान क्यों नहीं प्राप्त होता है? ख्याल में आई इन बात? 9 पदार्थों को सब जानते हैं, क्योंकि 14, 10 और 9 पूर्वों के बिना स्तोक ग्रंथ से भी 9 पदार्थ विषय ज्ञान देखा जाता है। ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि स्तोक ग्रंथ से बीज बुद्धि मुनि ही पूरा जान सकते हैं। जिनकी बीज बुद्धि है वही यानी छोटे ग्रंथों में से उसके पूरा उसका ग्रहण हो जाता है, उनका ज्ञान हो जाता है। उनके सिवा दूसरे मुनियों को जानने का अन्य कोई साधन नहीं है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनके सिवा अन्य कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं होते। इस विश्व में 9 ही पदार्थ है। कौन कौन से? अभी हमने जो पढ़े थे, इसको हम 7 तत्व या 9 पदार्थ कहते हैं। इसलिए स्तोक श्रुत से इनका ज्ञान करना शक्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। यानी अल्प ज्ञान से ये 9 पदार्थ पूरे जानने में नहीं आते। और द्रव्य श्रुत का यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान के उपलिंग भूत पुद्गल के विकार स्वरूप जड़ वस्तु को श्रुत मानने में विरोध आता है। क्या कहा, क्या कह रही है, स्तोक श्रुत से, स्तोक श्रुत यानी ये द्रव्य श्रुति की बात नहीं है, श्रुत ज्ञान जो जीव की बात है, इनका ज्ञान करना शक्य नहीं है। और यहाँ द्रव्य श्रुत का अधिकार नहीं, जो स्तोक श्रुत कहा वो द्रव्य श्रुत को स्तोक नहीं कहा, वो ज्ञान को कहा है, क्योंकि ज्ञान के उपलिंगभूत पुद्गल के विकार स्वरूप, पुद्गल का विकार यानी पुद्गल का, पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का कार्य क्या है, जड़ वस्तु क्या है, वाणी है, ग्रंथ की रचना है, उसको श्रुत मानने में विरोध है। मैंने ग्रंथों को, वाणी को यहाँ श्रुत नहीं कहा है। पुद्गल के विकार रूप जड़ वस्तु यानी क्या है, ये शब्द रचना जो है, ग्रंथ जो है, ग्रंथ रूप रचना जो है, उसको यहाँ श्रुत नहीं कहा। यदि कहा जाए स्तोक द्रव्य श्रुत से नौ पदार्थों को पूरी तरह जानकर शिवभूति आदि बीज बुद्धि मुनियों के ध्यान नहीं मानने से मोक्ष का अभाव प्राप्त होता है, ये बीज बुद्धि लिखा उन्होंने, द्रव्य श्रुत अल्प था पर बीज बुद्धि थी उनकी, तो कहते उनको ध्यान नहीं होगा, अगर ऐसे मानेंगे तो उनको मोक्ष का ही अभाव होगा। सो इस पर यह कहना है कि स्तोक ज्ञान से यदि ध्यान होता है तो वह क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के अयोग्य धर्म ध्यान ही होता है। देखो देखो कितना स्पष्ट बताया, यदि स्तोक ज्ञान से ध्यान होता है तो क्षपक श्रेणी के योग्य नहीं होता है,
उपशम श्रेणी का भी बना,
हाँ दोनों ही ले ना, यानी श्रेणी के योग्य ध्यान नहीं होता है तो धर्म ध्यान होता है, परंतु 14, 10 और 9 पूर्वों के धारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यानों के स्वामी होते हैं, क्योंकि ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता, इसलिए उन्हीं का यहाँ निर्देश किया है। देखो उनके भले वो द्रव्य श्रुत अल्प जाना था पर वो बीज बुद्धि वाले थे, और उनके तो 10 और 9 पूर्व के वो तो उनके बिना कोई उनके स्वामी नहीं होगे, केवल तीक्ष्ण बुद्धि नहीं होती है उनके तो, एक केवल वो तो अर्थपद से तो उनके तो पूरे के पूरा ज्ञान हो जाता है, वो बीज बुद्धि और बुद्धि रिद्धियों की बात हमने पढ़ी थी पहले, बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि वगैरह बातें देखी थी, बहुत उसके भेद है। बिल्कुल होगा ही ना, उनको भी, उनको बुद्धि इतनी थी, वो द्रव्य श्रुत भले अल्प जानते थे, शिवभूति मुनि की बात हमेशा आती है ना कि उनको कुछ वो तुष मास से भिन्न वाली, तुष भिन्न मास भिन्न ने उड़द की दाल देख रहे कोई फोतरा, वो जुदा है ये मैं जुदा है, उनको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था ऐसा थे। तो देखो पहले में पहले ध्याता की बात थी, कौन सा ले, उत्तम सहनन वाला लिया है, और 14 पूर्व, 9 पूर्व या 10 पूर्व की बात बताई। अब कहते हैं वह ध्याता सम्यक दृष्टि होता है, वो तो नेचुरली होना चाहिए, कारण कि नौ पदार्थ विषयक रुचि प्रतीति और श्रद्धा के बिना ध्यान की प्राप्ति संभव नहीं है, उसकी क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के मुख्य कारण संवेग और निर्वेद अन्यत्र नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि को ही वो सच्चे हो गए, बाकी तो ऐसे संवेगाभास वो हो सकता है, परंतु सच्चे हो गए तो सम्यक दृष्टि के होंगे। वह ध्याता, ध्याता की बात चल रही है ना, ध्याता कैसे होता है, पहले में पहले उत्तम सहनन वाला, बलशाली शूर, ये पूर्वविद, और फिर नौ पदार्थों को भले प्रकार जानने वाला है। अब कहते यानी सम्यक दृष्टि बताया था, वह ध्याता समस्त बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्यागी होता है, यानी वो ध्यान यानी कौन सा ध्यान, वो तो श्रेणी के योग्य ध्यान की बात यहाँ चल रही, क्योंकि जो क्षेत्र वास्तु धन धान्य द्विपद चतुष्पद, दो पैर वाले यानी वो दास दासी वगैरह, चतुष्पद यानी अन्य कोई उसके, यान, यान यानी उनके जो वाहन कोई ले जाता है, यान, शयन आसन शिष्य कुल गण और संघ के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, ये तो अंतरंग परिग्रह ले रहे, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद आदि अंतरंग परिग्रह की कांक्षा से वेष्टित है। पहले में पहले बाह्य धन धान्य वगैरह जो बाह्य लिए और उनके कारण उत्पन्न हुए अंतरंग परिग्रह, उसके शुभ ध्यान नहीं बन सकता, इस विषय में गाथा। जानिच्च लक्षणम जे अज्जवलहु अत्त वुढ उवैसा उवैसाणा सुत्त निस्सगगाहो रुचियो से। जिसकी उपदेश जिनाज्ञा और जिन सूत्र के अनुसार आर्जव, आर्जव ने रुजुता सरलता लघुता और वृद्धत्व गुण से युक्त स्वभावगत रुचि होती है, वह ध्यान करने वाले का लक्षण है। उपदेश के अनुसार, जिनाज्ञा के अनुसार, जिन सूत्र के अनुसार। अब ध्याता का ये लक्षण चल रहा है अभी। वह ध्याता एकांत और प्रासुक ऐसे पहाड़, गुफा, कंदरा, पब्भार यानी गिरी गुफा, श्मशान, आराम और उद्यान आदि देश में स्थित होता है, क्योंकि अन्यत्र मन के विक्षेप के हेतुभूत पदार्थ दिखाई देने से शुभ ध्यान के विनाश का प्रसंग आता है। वह ध्याता अपनी सुखासन अर्थात सहज साध्य आसन में बैठता है, क्योंकि असुखासन से बैठने पर उसके अंग दुखने लगते हैं, जिससे ध्यान में व्याघात होना संभव रहता है, इस विषय में गाथा। 14 नंबर ऊपर। जच्चिय देहावत्था जयान झाणावरोहिणी होई जाए जो तदवत्थो ठियो सन्नो निवन्नो वा। जैसी भी देह की अवस्था जिस समय ध्यान में बाधक नहीं होती, उस अवस्था में रहते हुए खड़ा होकर या बैठकर कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान करें, यानी कायोत्सर्ग ने काय का लक्ष्य छोड़ देना। उस ध्याता के ध्यान का कोई नियत काल नहीं होता, क्योंकि सर्वदा शुभ परिणामों का होना संभव है, इस विषय में गाथाएं हैं। 15 नंबर ऊपर। सौवा सुवट्टमाणा मुनो जम देश काल चेठासु वर केवलादिलाहम पत्ता बहुसो खविय पावा। सब देश, सब काल और सब अवस्थाओं में विद्यमान मुनि अनेक विध पापों का क्षय करके उत्तम केवल ज्ञान आदि को प्राप्त हुए। कोई रात को हुए, कोई सुबह हुए, कभी ऐसा कोई किस देश में होना, ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ नहीं केवल ज्ञान प्राप्त होता, यानी वहां पर उन्होंने उस काल में ध्यान किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब 16 नंबर। तोजत्थ समाहानम होज्जमनो वयन काय चोगाणम भूदो वघाय रहियो सोदे सोझाय मानस। मनोयोग, वचन योग और काय योग का जहाँ समवधान हो, समवधान का अर्थ होता है एकाग्रता हो, नीचे लिखा है ना अर्थात एकाग्रता, वो समवधान के लिए आया है शब्द। फिर से, मनोयोग, वचन योग और काय योग का जहाँ समवधान यानी एकाग्रता हो और जो प्राणियों के उपघात से रहित हो, यहाँ एकाग्रता नहीं लेनी, उपघात के लिए एकाग्रता नहीं, वो समवधान के लिए है, वहां वो ले जाना। हाँ, पहले लास्ट टाइम हमने किया था ये समवधान के बाद, वो अर्थात एकाग्रता वाला कॉलम वो समवधान के बाद होना चाहिए। आपके उसमें क्या लिखा है? हाँ? अच्छा, हाँ, तो वो वहां एरो करके वो एकाग्रता वहां ले लेना। और जो प्राणियों के उपघात से रहित हो, वही देश ध्यान करने वाले के लिए उचित है। देश कौन सा होना चाहिए? कि जहां मनोयोग वचनयोग कायोग की एकाग्रता हो सकती है और प्राणियों के घात से जो रहित है। अब 17 नंबर, निच्चम वियजु वही पशु नौंस कुशील वज्जियम जैनो ठाणम वियणम भणियम विशेष दोक्षाण कालमी। जो स्थान श्वापद यानी पशु स्त्री, अच्छा श्वापद ने हिंस्र श्वापद को लिया, हिंस्र को श्वापद कहते, स्त्री पशु नपुसक और कुशील जनों से रहित तो हो और जो निर्जन हो, यति जनों को विशेष रूप से ध्यान के समय ऐसा ही स्थान उचित माना है। 18 नंबर, थिरकय जोगाणम पुनः मुनीन झाणे सुनिच्चलमणानम गामम मिजणा इन्ने सुन्ने रन्ने यण विशेषो। परंतु जिन्होंने अपने योगों को स्थिर कर लिया है और जिसका मन ध्यान में निश्चल है, ऐसे मुनियों के लिए मनुष्यों से व्याप्त ग्राम में और शून्य जंगल में कोई अंतर नहीं है। समझ में, पहले में पहले तो शून्य की बात की, परंतु ऐसे जो एकाग्र चित्त वाले मुनियों के लिए कहीं पर भी हो तो वो तो अपने आत्मा का उसमें स्थिर हो सकते हैं। 19 नंबर, कालो विसोच्य जही जोग समाहानम उत्तमम लहई नव दिवस निवासा वेला दिनियमणम झाइनो समय। काल भी वही योग्य है जिसमें उत्तम रीति से योग का समाधान नहीं चाहिए, समवधान प्राप्त होता है। पहले आई थी ना बात, समवधान ने एकाग्रता, ये समाधान निकालकर समवधान करना। ध्यान करने वाले के लिए दिन रात्रि और वेला आदि रूप से समय में किसी प्रकार का नियमन नहीं किया जा सकता। ध्यान तो जब हो अपना वहां तब करना चाहिए। अब यहां रुकेंगे क्योंकि अभी और भी दो चार गाथाएं हैं। मैंने सोचा था ये ध्याता वाला हो जाएगा, परंतु कल देखेंगे, और भी आगे के पेज पर भी गाथाएं हैं। ये 19 के बाद अभी हम रुकेंगे, 20 को कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो गुरु। अश्विन
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो जनम नमो।